ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
நாராயண் 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 நாராயண். ஹம் சப் स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं. स्वाध्याय भी स्वामी जी करा रहे हैं और आपने बहुत बड़ी कृपा की कि आज और कल के लिए आपने प्रवचन देना स्वीकार किया. स्वामी जी गीता जी में जो भगवान ने तप का महत्व बताया है उसके बारे में अपने विचार करेंगे. मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं. जय श्री कृष्ण.
ஓம் தத் சத் ப்ரஹ்மணே நமஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் நமோ சச்சிதானந்த பகவான் உபஸ்தித சஜ்ஜனோ, ஹம் லோக் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா மே சத்தரவே அத்தியாய மே பகவான் நே तप का स्वरूप बताया है. यद्यपि और भी बातें बताई है किंतु उन बातों में से हम लोग केवल तप के बारे में विचार करेंगे. भगवान श्री कृष्ण ने छह श्लोकों में तप का स्वरूप बताया है. सत्तरवें अध्याय के चौदहवें श्लोक से उन्नीसवें श्लोक तक देखिए तप क्या है, तप किसको कहते हैं. प्रायः हम लोग यही समझते हैं शरीर को सुखा देना ही मानो तप है, भूखे रहना ही तप है, एक एक महीना तप तक भूखे रहो, जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दिया जाए लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा तप है. देखिए ये सब आध्यात्मिक बातें हैं। हम लोग इन बातों को अपने ढंग से प्रत्यक्ष रूप से तर्क से बुद्धि से परस्पर के विवाद से क्या कार्य है क्या अकार्य है उन बातों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। जो बात प्रत्यक्ष दृष्ट है उसमें तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी है, किंतु जिसका फल अदृष्ट है, पारलौकिक है, यहां तक कि मोक्ष है, तो इस प्रकार के फल में जो कारण साधन है वो साधन भी अलौकिक ही है। इसलिए प्राय हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है वो क्या बिना कष्ट नहीं हो सकता, क्या कुछ किए बिना बैठे बैठे नहीं हो सकता, क्या एयर कंडीशन में आराम से बैठे बैठे इसकी चर्चा करते हुए आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। क्यों ये लोग हिमालय में जाते, आखिर क्या आवश्यकता है? हमारे मन में यही प्रश्न उठते रहते हैं। कहते हैं चाहे जैसे कर्म करो वो पाप हो या पुण्य हो इससे मतलब नहीं है, क्यों उससे सुख क्यों नहीं मिलेगा। कई एक लोग जो है पाप कर्म करते हैं फिर भी सुखी होते हैं, दिखता तो ऐसा ही है, पाप करने वाले दुखी है, पुण्य कर्म करने वाले पाप कर्म करने वाले सुखी है और पुण्य कर्म करने वाले दुखी है। इससे तो लगता है कि यदि सुखी होना है तो सबसे ज्यादा मार्ग अच्छा है शॉर्टकट, है कि नहीं? और शॉर्टकट मार्ग जो है वो पाप के दरवाजे से ही प्रवेश किया जा सकता है, वो बहुत बड़ा दरवाजा है, खुला ही रहता है, वहां कभी कोई पहरेदार नहीं रहता है, चाहे जब उसमें प्रवेश कर लो। पुण्य के मार्ग में तो बहुत बड़ी बात है, पहरेदार भी है, चौकीदार है, 24 घंटा कोई न कोई रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन पाप कर्म के लिए है कुछ ऐसा? इसलिए हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग कर्म तो कर ही रहे तो क्यों हमसे पाप कर्म में ज्यादा प्रवृत्ति होती है, पुण्य कर्म में कम प्रवृत्ति होती है, ऐसा आखिर क्यों होता है? हम लोग कर्म करते हैं और यहां तक कि कर्म किए बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। भगवान ने तो कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। घंटे दो घंटे दिन भर की बात क्या करे, या 60 साल के बाद की बात क्या करे, 58 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो वो बात नहीं है कि 60 साल के बाद आदमी व्यक्ति खाली हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, निष्कर्मी हो जाता है, अकर्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं एक क्षण भर भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। कर्म को तो हम छोड़ नहीं सकते, होना ही है, तब करना क्या है? करना यह है कि अब हम करेंगे तो सही कुछ न कुछ, तो कुछ ऐसा ही करें जिससे हमको सुख की प्राप्ति होए। तो कैसे जाने कि किस प्रकार के कर्म से सुख की प्राप्ति होती है या किस प्रकार के कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है, इसका निर्णय कैसे करें? कोई न कोई निर्णायक तो होना ही चाहिए। बाहर से क्रिया तो सब एक जैसी लगती है, चाहे पुण्य क्रिया हो चाहे पाप क्रिया हो, उन दोनों प्रकार की क्रियाओं में कारण जो पांच कारण भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, वो पांचों कारण तो दोनों में बराबर है। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कोई भी कर्म करो तो उसमें पांच कारण होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, पंचेते तस्य हेतवः। ये भगवान ने बताया। देखो, कर्म करने के लिए, वो कर्म चाहे पाप हो या पुण्य हो, पहले क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान का क्या अर्थ है? शरीर। शरीर नहीं होगा तो कर्म होगा? नहीं होगा। शरीर चाहिए। फिर कर्ता चाहिए, चित जड़ ग्रंथि अहंकार, कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं, कि मेरे को करना। अधिष्ठानम तथा कर्ता, मैं कर रहा हूं, देह के साथ अहम बुद्धि, देह में मैं बुद्धि होगी तब जीव अपने को कर्ता मानता है। तो वो एक तो हो गया शरीर, दूसरा कारण है, दूसरा हेतु है कर्ता भाव, तीसरा कारण भगवान ने बताया करणम च पृथक विधम। पृथक विधम माने जो भिन्न भिन्न करण, हमारे पास कितने करण है? 10 करण है। कितने? 10। करणम का अर्थ है इंद्रियादि, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। देखिए, कुछ भी करना है, कर्म करना है, चाहे वो पाप कर्म या पुण्य कर्म, वो समझ के चले, वो करना है तो यही चक्षुरादि इंद्रिया काम करती है, यही कर्म इंद्रियादि काम करती है। पाप करने में भी यही ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया काम करती है, पुण्य कर्म करने में भी यही ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, अलग तो कोई साधन नहीं है ना। तो ये हो गए करण। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, पृथक विध विध प्रकार की चेष्टा, यानी कि क्रिया समझ लीजिए। क्रिया किससे होती है? हमारा शरीर जो वो चल रहा है, फिर रहा है, उसमें कारण क्या? प्राण। प्राण नहीं होते तो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी कुछ नहीं कर सकते, कर्म इंद्रियों के द्वारा भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, कर्म इंद्रिय के द्वारा कुछ उठाना है तो क्या चाहिए? कहते हैं ना, दम चाहिए। तुम में दम नहीं है, नहीं कहते? अभी मैं कर लेता हूं, वो दम से उठाता है। दम क्या? वही तो प्राण। दम कोई प्राण से जुदा थोड़ा? इसलिए आप उठाते हैं तो पहले श्वास भरते हैं, कुंभक करते हैं, और तभी कुछ चीज उठा पाएंगे। ये तो उठाने की या चलने की क्रिया में ये प्रतीति हो जाती है, किंतु चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, तो उन सब क्रिया में प्राण कारण होता है। प्राण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। देख लीजिए, यदि निष्प्राण शरीर है तो उससे कुछ क्रिया होती है? नहीं होती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रिया में ये प्राण भी कारण है, द्विविधाश्च पृथक चेष्टा। और पांचवा भगवान ने कहा देव है। देव क्या है? देव यानी कि देवता। देखिए आप लोगों को पता है, सालों से सुन रहे हैं तो इतना तो पता ही है कि हम जो भी क्रिया करते हैं तो क्रिया के पीछे देवताओं की कृपा रहती है। यदि देख रहे हैं तो किसके कृपा से? देखिए अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अंधेरा हो जाए, ये खिड़कियां भी बंद है, पर्दे वर्दे सब बंद है और बिजली चली जाए, दिन में तो फिर भी कुछ उजाला आएगा। यदि रात का टाइम है, अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात लीजिए, उसमें बिजली चली जाए तो क्या हम, मैं तो आपको देख पाऊंगा और आप लोग मेरे को देख पाएंगे? तो क्या हमारी आंखें खराब हो गई? नहीं, आंखें तो बिल्कुल भली चंगी है, किंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे हम देख रहे थे वो प्रकाश चला गया। ये प्रकाश क्या है? देवी तो तेज है, प्रकाश क्या है? तेज। और हमारे यहां तेज देव को क्या नाम दिया है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, कुछ भी कीजिए, वो सब एक ही है। यज्ञ में हवि किसको दी जाती है? अग्नि को। क्यों? हमको देखने में कारण है। इसलिए ये तो केवल आपको एक इंद्री के लिए बताया, सभी इंद्रियों में समझ सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर में हमारे इंद्रियों के जो गोलक है उन सभी गोलकों में एक एक देवता रहते हैं। देवता का मतलब ये नहीं, देवता का मतलब केवल ये नहीं कि जिसको दो चार हाथ हो, हाथ में खप्पर हो, परशु हो, कृपाण हो, तलवार हो, त्रिशूल हो। समाज में तो यही अर्थ रूढ़ हो गया हुआ, किंतु जब इस प्रकार का विचार करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि देवता का अर्थ है जो देते रहे, कभी ले नहीं। जो देने का है जिसका स्वभाव है, इसलिए भी व्यवहार में जिसका देने का ही स्वभाव है उनको क्या कहते हैं? ये तो देव व्यक्ति है जो देता ही रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि मेरे को वापस दे या ना दे। जिसके पास है वो देता रहता है तो उसको लोग कहते हैं तो देव है। तो देखिए ये अग्नि वगैरह देवता है, वायु वगैरह वायु जिसके द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं, दिशा के द्वारा हम सुन सकते हैं, वरुण देव की कृपा से हम बढ़िया बढ़िया जो है भोग चख सकते हैं। राजभोग का आस्वादन करना है तो किससे करेंगे? चक्षुरादि इंद्रिया के द्वारा ही तो, रसना इंद्रिय के द्वारा ही तो। वरुण देव की कृपा नहीं होगी तो यह नहीं होगा। तो अभिप्राय मेरा यह है कि ये कर्म के पीछे ये पांच कारण होते हैं, अधिष्ठान शरीर, कर्ता भाव, इंद्रियों की चेष्टा, प्राण की चेष्टा और ये अग्नि आदि जो देव है उन देवताओं की कृपा। ये कृपा जो है बनी रहती है। भगवान ने कहा न्यायम वा विपरीतम वा, चाहे व्यक्ति न्यायम यानी कि धर्म कर्म करता है या उससे विपरीत अधर्म करता है, तब भी कारण तो ये पांचों ही है। अब ये पांचों जो है कारण तो सब दोनों प्रकार के कर्म में है ही है, लेकिन अब हमको न्यायम करना है या भगवान ने जैसे कहा विपरीतम या अधर्म, न्यायम का है धर्म, विपरीतम अधर्म करना है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। अब हमारा जो स्वातंत्र्य है उस स्वातंत्र्य को हम पुण्य कर्म में भी लगा सकते हैं और पाप कर्म में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हमारे वहां भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या कार्य है यानी कि क्या न्यायम है यानी क्या धर्म्यम है और क्या अकार्यम यानी कि अन्यायम है अधर्म्यम है पाप कर्म है। हे अर्जुन, उनका प्रत्यक्ष से जैसे मैंने पहले बता दिया कि तर्क युक्ति उपपत्ति प्रत्यक्ष या बुद्धि बल से इसको ये निश्चय नहीं किया जा सकता है। तो निश्चय किससे होगा, शास्त्र से होगा। किससे, शास्त्रम प्रमाणम। कार्य और अकार्य में प्रमाण क्या है, शास्त्र ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष से हमको लगता है कि अरे इसमें क्या क्या दिक्कत है, ये करने में अच्छा ही तो है, लेकिन शास्त्र में जिसका निषेध है तो वो पाप कर्म है। बाहर से यदि लगता है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे को नहीं करना है, किंतु वो शास्त्र के द्वारा विहित भी हो सकता है। हिंसा के बारे में ले लीजिए, हिंसा के बारे में हमारे वहां बहुत सारी विचारधारा चली, यहां तक कि हिंसावादी और अहिंसावादी दोनों की बातें चली, क्या हिंस्य है क्या अहिंस्य है, उसके बारे में कई लोगों ने शास्त्र की अनदेखे करके निर्णय करना चाहा। तो जो अहिंसावादी थे उन्होंने भी शास्त्र का इनकार किया और कहने लगे कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किंतु अब ये कहां तक, तो उनके पास कोई हद नहीं है। जिसकी कोई हद नहीं है उसको आप बटोर नहीं सकते कि ये इतना मैंने कर लिया। और जिन्होंने ये अहिंसा या हिंसा का निश्चय वेद के द्वारा किया, वेद प्रमाण शास्त्र प्रमाण को सामने रख करके किया, तो उनके वहां तो ये हद हो गई कि ये इतनी हिंसा है और इतनी अहिंसा है। इससे व्यवहार की भी रक्षा हुई और शास्त्र प्रमाण की भी रक्षा हुई। जिन्होंने अहिंसा और हिंसा का अर्थ वेद को इनकार करते हुए अपने तर्क से किया, वहां व्यवहार की रक्षा नहीं है। और व्यवहार की रक्षा नहीं है इसलिए खुद को व्यवहार नहीं करना है, इसलिए दूसरे के कंभों के ऊपर बैठ करके वो अपना अव्यवहार्य धर्म चला रहे, किंतु जिसके कंभे पर बैठे हैं वो चल भी तो रहा है और उनके कंभे पर बैठ करके हम कहेंगे मैं तो सिर हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये तो भागेड़ू वृत्ति कहते हैं इसको। इसलिए अभिप्राय यह है कि क्या कार्य है क्या अकार्य है उसमें शास्त्र प्रमाण है। क्या है, इसलिए उसी यही प्रसंग के बारे में कहता हूं कि कई लोग जो आजकल भगवान श्री कृष्ण को हिंसावादी कहते हैं, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने तो देखो अर्जुन अहिंसावादी था, उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी थी कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती मानो अर्जुन को इस तरह से उकसाया कि अर्जुन मारने के लिए तैयार हो गया और महाभारत का ऐसा महाभयंकर युद्ध हुआ कि कहीं एक केवल मनुष्य ही नहीं, कहीं और भी जीव जिसकी कोई गणना नहीं है, इतने लोग मर गए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते बड़े हिंसावादी थे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शास्त्र का इनकार किया वहां अहिंसा की कोई हद नहीं है, हमारे यहां यह हद है कि किसको हिंसा कहते हैं किसको अहिंसा कहते हैं। हमारे वहां ये शास्त्र के द्वारा ये कह सकते हैं, शास्त्र के द्वारा ये निश्चय है कि किसको हिंसा और किसको अहिंसा कहेंगे, और जिसके वहां निश्चय नहीं है उन लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर को भी हिंसावादी कहना पड़ेगा। वो जो लड़ रहे हैं और सरहद के ऊपर जो गोली रात भर जो बंदूक ताने खड़े हुए हैं देश की रक्षा के लिए, उनको भी हिंसावादी कहना होगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए क्या कार्य है क्या अकार्य है उसमें प्रमाण क्या है, शास्त्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारहसि। अर्जुन क्या कार्य और अकार्य को शास्त्र के द्वारा जानकर के करना चाहिए, ऐसा नहीं जो हमको अच्छा लगे वो करो और अच्छा नहीं लगता है तो न करो, ऐसा नहीं। चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शास्त्र में जिसको विहित रूप से कहा है तो उनका अनुष्ठान करना है, और चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे शास्त्र में जिसका निषेध है निषेध किया है तो उनको नहीं करना है। तप के बारे में लीजिए कि हम लोग तप कर रहे हैं किंतु मनमाने ढंग से कर रहे हैं या शास्त्र में जो विहित रूप से कहा है वैसे कर रहे हैं, वो ऐसा हमारे सामने ऐसा निर्णय नहीं है। इसलिए करना क्या होगा, शास्त्र विधानोक्तम तब करना चाहिए। शास्त्र क्या है, हमारे पास यदि जैसे सामान्य ढंग से कहते हैं कि हाथ वगा साधन, शास्त्र तो शास्त्र की परिभाषा करेंगे तो समय भी लग जाएगा, किंतु शास्त्र का अर्थ आप लीजिए गीता ही शास्त्र है। क्या है गीता, क्या है शास्त्र है और उपनिषद है। गीता क्या है, उपनिषद। शास्त्र का अर्थ होता है शासनात शास्त्र, जो शासन करे उससे कहते हैं शास्त्र। पूर्वाचार्यों ने बताया, भट्टपाद जी कहते हैं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृत केन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम इत्य अभिधीयते। प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें, क्या प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ है यही कार्य और अकार्य, क्या कृत है क्या अकृत है वो बताए। ये शास्त्र कहते हैं कि ये करो ये न करो, ये करने योग्य है या ये नहीं करने योग्य है। पुरुष के लिए जो उपदिश्य बात है उसको कहते हैं शास्त्र। तो ये इस प्रकार से गीता शास्त्र है। अब यदि हम कर रहे हैं, भगवान ने तो प्रसंग से ये बताया कि शास्त्र विधान से ही कर्म करना चाहिए, तो अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन पूछने लग गया कि भगवान संसार में यावत प्राणी तो शास्त्र पढ़े हुए है नहीं, कार्य अकार्य में शास्त्र प्रमाण है ये बात निश्चित, किंतु यावत प्राणी शास्त्र तो पढ़े हुए है नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रद्धा से करते जा रहे, किससे श्रद्धा से। तो श्रद्धा से कर रहा है कि क्या वो श्रद्धा तो है ही उसमें, तो श्रद्धा से कर रहा है। अब शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं किंतु श्रद्धा से कर रहा है, तो वो जो उनके द्वारा श्रद्धा से किया गया जो कर्म है वो कर्म उनके लिए ज्ञान का कारण बनेगा कि नहीं। कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि के मार्ग से वो आत्मज्ञान का भागी होगा कि नहीं, या तो उनकी जो निष्ठा है वो सात्विक निष्ठा मानी जाएगी, राजसिक निष्ठा मानी जाएगी, या तामसिक निष्ठा मानी जाएगी। भगवान बताइए किसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानता। हम लोग बैठे हुए हैं, क्या सब लोग शास्त्र जानते? क्या सब पढ़े हुए हैं क्या? हम क्या हम वेदाध्ययन कर रहे हैं? इस समय जो शिक्षा जो चल रही है क्या वेदाध्ययन शिक्षा है?